भो मित्रगणाः अभिवादनं करोमि। स्वागतमस्तु। शृणोतु रेडियो मधुबनस्य कार्यक्रमः पठामि संस्कृतम् इति। अर्थात हे मित्रगण, मैं अभिवादन करती हूँ, सबका स्वागत है। आप सब सुनिए रेडियो मधुबन का कार्यक्रम पठामि संस्कृतम्। मित्रगणाः, वयं जानीमः यत् हिन्दीभाषायाम् एका प्रथा वर्तते। यदा अहं सम्मानं आदरं च दर्शयितुम् इच्छामि तदा अहं पृच्छामि, आप क्या करते हैं, आप कहाँ जाते हैं, आप कहाँ रहते हैं, आपका नाम क्या है इत्यादि। अर्थात हे मित्रगण, हम जानते हैं कि हिंदी भाषा में एक प्रथा है या हिंदी भाषा का एक नियम है कि यदि मुझे सम्मान सूचक या आदर सूचक वाक्य कहना हो तो मैं पूछती हूँ, आप क्या करते हैं, आप कहाँ जाते हैं, आप कहाँ रहते हैं, आपका नाम क्या है इत्यादि। अत्र सर्वेषु वाक्येषु मम क्रियापदानि प्रथमपुरुषस्य बहुवचनस्य रूपाणि धारयन्ति। अर्थात यहाँ मैंने जितनी भी क्रियाएं प्रयुक्त की हैं वे सब की सब प्रथम पुरुष का बहुवचन का रूप धारण करती हैं। जैसे आप कहाँ रहते हैं तो यह प्रथम पुरुष का रूप हो गया और बहुवचन का रूप हो गया। और यह प्रथा भारत की प्रायः सभी भाषाओं में प्रयुक्त होती है। हम सामान्यतः कहते हैं कि तुम क्या करते हो, लेकिन जहाँ हमें सम्मान दर्शाना होता है वहाँ तुम की जगह आप शब्द आने से क्रिया का रूप भी बहुवचन में चला गया। इसी बात को यहाँ संस्कृत में मैं रख रही हूँ कि हिंदी भाषायाम मध्यम पुरुषस्य बहुवचनस्य संबोधनम आप इति उच्यते, तथि आदर सूचकम संबोधनम अपि वर्तते। कि हिंदी भाषा में मध्यम पुरुष के बहुवचन का संबोधन आप है और आदर सूचक संबोधन करने के लिए भी वही शब्द आप उसी का प्रयोग होता है। परंतु संस्कृत भाषायाम द्वौ भिन्नौ शब्दौ स्तः। मध्यम पुरुषस्य बहुवचनार्थम यूयम इति शब्दः प्रयुज्यते, परंतु आदर सूचनार्थ भवान इति शब्दः वर्तते। तत्र अपि स्त्रीलिंगात्मकः शब्दः भवति इति वर्तते। यथा भवान किं करोति, भवती किं करोति, भवत्याः नाम किं इत्यादि। अर्थात हिंदी भाषा में मध्यम पुरुष के बहुवचन का संबोधन आप है और आदर दिखाने के लिए भी उसी संबोधन का प्रयोग होता है। किंतु संस्कृत भाषा में दो अलग अलग शब्द हैं। मध्यम पुरुष का बहुवचन का शब्द यूयम है, जिसे हम पढ़ते हैं त्वम, युवाम, यूयम, ये प्रथमा के रूप हो गए। तो मध्यम पुरुष के लिए बहुवचन का शब्द हो गया यूयम। परंतु आदर दिखाना हो तो हम भवान शब्द का प्रयोग करते हैं। और वहां भी जिस व्यक्ति के प्रति आदर दिखाना है वह व्यक्ति अगर स्त्री है जिसे आदर सूचक संबोधन से संबोधित करना है तो भवान की अपेक्षा भवती शब्द का प्रयोग किया जाता है। तो भवान हो गया पुल्लिंग और भवती हो गया स्त्रीलिंग। और भवान में भी एक वचन का रूप है भवान और उसका शब्द रूप इस प्रकार चलता है भवान भवंतौ भवंतः प्रथमा। तो अगर एक व्यक्ति हो जिसके लिए मुझे आदरार्थी संबोधन करना है तो मैं कहूंगी भवान। अगर दो व्यक्ति हो और दोनों के लिए मुझे आदरार्थी संबोधन करना है तो मैं कहूंगी भवंतौ। और अगर कई लोग हो तो मैं कहूंगी भवंतः। तो भवान भवंतौ भवंतः ये हो गया पुल्लिंगी आदरार्थी शब्दों के लिए प्रथमा विभक्ति का रूप, और भवती हो गया स्त्रीलिंगी शब्द का एक वचन का रूप। और इसका उदाहरण है भवान किम करोति, आप क्या करते हैं, लेकिन यहाँ भवान चूंकि आदरार्थी एक वचन का संबोधन है तो इसके साथ प्रथम पुरुष की क्रिया लगेगी और वह एक वचन में ही लगेगी। जैसे भवान किम करोति, आप क्या करते हैं, लेकिन अगर मैं बहुवचन लगाऊंगी भवन्तः किम कुर्वन्ति, भवती किम करोति, आप महोदया क्या करती हैं, भवत्याः नाम किम, आप महोदया का नाम क्या है? तो जैसे हर शब्द के लिए उसकी सातों विभक्तियों के और संबोधन के रूप बनते हैं, जिन्हें हम शब्द रूप कहते हैं, उसी प्रकार भवान शब्द के भी सातों विभक्तियों के रूप बनेंगे और भवती शब्द के भी सातों विभक्तियों के और एक वचन, द्विवचन और बहुवचन के इस प्रकार 21 शब्द रूप दोनों के बनेंगे। तो इन बातों को हमें संस्कृत में थोड़ा सा याद रखना पड़ता है, लेकिन इसका उपयोग ये है कि किसी भी वाक्य को पढ़ने पर हमें तत्काल पता चल जाता है कि वह वाक्य किसी महिला को संबोधित कर रहा है या किसी पुरुष को, एक व्यक्ति को संबोधित कर रहा है, दो को संबोधित कर रहा है या कईयों को संबोधित कर रहा है। तो अगर हम इस प्रकार का थोड़ा सा विस्तार अपने भाषा के व्याकरण में लाएं तो उसे ये फायदा होता है। और भवती शब्द का रूप उसी प्रकार चलेगा जिस प्रकार नदी शब्द का रूप चलेगा, क्योंकि नदी और भवती दोनों ही शब्द दीर्घ इकारांत स्त्रीलिंगी शब्द हैं। तो जैसे हम कहते हैं नदी नद्यौ नद्यः प्रथमा, नदीम नद्यौ नदीः द्वितीया, उसी प्रकार भवती भवत्यौ भवत्यः प्रथमा, इस प्रकार भवती शब्द का रूप बनेगा। हम कहते हैं भवान कुत्र गच्छति, उसी प्रकार भवती कुत्र गच्छति। अगर द्विवचन हो तो हम कहेंगे भवन्तौ कुत्र गच्छतः या भवन्तौ कुत्र पठतः, आप दोनों कहाँ पढ़ते हैं। स्त्रीलिंगी हो शब्द तो भवत्यौ किम कुरुतः, आप दोनों क्या करती हैं। भवन्तः किम गायन्ति, आप सब लोग क्या गाते हैं। भवत्यः किम गायन्ति, आप सभी महिलाएं क्या गाती हैं। या भवत्यः किमर्थम हसन्ति, आप सब महिलाएं किस लिए हंस रही हैं। तो देखा तुमने कि लिंग वचन दोनों के अनुरूप हमारी क्रियापदों का रूप बनेगा और इसको निभाना यह संस्कृत में आवश्यक होता है। तो मित्रों आगे बढ़ते हैं, सदा की तरह हम कुछ संस्कृत श्लोक पढ़ते हुए कार्यक्रम की समाप्ति की ओर चलेंगे। मित्रों इन संस्कृत श्लोकों के लिए हमें पुणे स्थित श्री अनंत कुलकर्णी जी का धन्यवाद करना होगा, क्योंकि मराठी के गण्यमान्य कवि माननीय कुसुमाग्रज, उनकी दो लघु कविताओं का मैंने हिंदी अनुवाद किया था और उसी का श्री कुलकर्णी जी ने संस्कृत में अनुवाद किया है। तो तुम्हारे सम्मुख मैं पहले हिंदी कविता और बाद में संस्कृत कविता रख करके उसका अर्थ समझाती हूँ। शक्कर दाना लेकर मुंह में गुजर रही थी चींटी, उसके पीछे पड़ी हुई थी पुलिस फूंकती सीटी। ये है माननीय कुसुमाग्रज की कविता का हिंदी अनुवाद, जिसका शीर्षक था लॉ एंड ऑर्डर। अब इसे बहुत खूबसूरती से कुलकर्णी जी ने संस्कृत में इस प्रकार लिखा है। मुखे संस्थाप्य शर्करा कणान गच्छन आसीत पिपीलिका, सीटिम वादयन रक्षाकर्मी धावति तस्याः पृष्ठतः। अर्थात मुख में संस्थाप्य, मुख में स्थापना करके, किसकी स्थापना करके, तो शर्करा कणों की, चीनी के कणों की मुख में स्थापना करके गच्छन आसीत जा रही थी पिपीलिका, पिपीलिका अर्थात चींटी। तो जिसे मैंने कहा कि गुजर रही थी चींटी, तो गच्छन आसीत पिपीलिका, सीटिम वादयन रक्षाकर्मी, और रक्षाकर्मी अर्थात पुलिस सीटी फूंकती हुई धावती तस्याः पृष्ठतः, उसके पीछे पीछे दौड़ रही थी। इसी प्रकार एक अन्य बहुत सुंदर लघु कविता जो हिंदी में इस प्रकार है कि गाते गाते जाऊंगा मैं, जाते जाते गाऊंगा मैं, जाने पर भी नील गगन के गीतों में रह जाऊंगा मैं। और इसका कुलकर्णी जी ने अनुवाद इस प्रकार करके दिया है। गच्छन गच्छन गास्याम्यहम, अर्थात जाते जाते मैं गाता हुआ जाऊंगा, गास्यामि मैं गाता रहूंगा जाते जाते भी, गायन गायन गमिष्याम्यहम अर्थात गाते गाते मैं जाऊंगा, तो जाते जाते गाऊंगा, गाते गाते जाऊंगा। और नीलाकाशस्य गीतेषु गत्वापि रतः तिष्ठामि अहम्। नीले आकाश के गीतों में जाने के बाद भी मैं रत रहूंगा, अर्थात मैं उनका ही आनंद लेता रहूंगा या उनमें ही मैं वास करता रहूंगा। तो नीलाकाशस्य गीतेषु गत्वापि रतः तिष्ठामि अहम्। गच्छन् गच्छन् गास्यामि अहम्। गायन् गायन् गमिष्यामि अहम्। नीलाकाशस्य गीतेषु गत्वापि रतः तिष्ठामि अहम्। इस बहुत सुंदर अनुवाद के लिए श्री कुलकर्णी जी का धन्यवाद करते हुए मित्रों हम आज का पठामी संस्कृतम कार्यक्रम समाप्त करते हैं। तुम सुनते रहो रेडियो मधुबन, पढ़ते रहो संस्कृत, मुस्कुराते रहो। नमस्कार।